Hare Krishna. Hare Krishna.
Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत. तो हम आपको आज नौवें स्कंद के 21वें अध्याय का एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे. श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है पर मेरे ख्याल से श्लोक का उच्चारण करेंगे तो काफी समय लग जाएगा. हाँ, मेरे पास दुराई है. ईश्वर लंबाना
सीतावतो
नान्या
राधसमयी
राजन
स्वप्नवत्
प्रत्यालियात ईश्वरलम्बनं चित्तं दुर्वतो
नान्यराधसा
राजन
माया गुणमयी राजन
स्वप्नवत् प्रत्यालियात
स्वप्नवत् प्रत्यालियात.
अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा.
अनुवाद इस प्रकार है, हमारे पीछे धराइए. हे महाराज परीक्षित, चूंकि राजा रंतिदेव शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण भावनामृत तथा पूर्ण रूपेण निष्काम था, अतएव भगवान की माया उसके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी. विपरीत इसके माया स्वप्न के समान पूरी तरह नष्ट हो गई. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए. जैसा कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार. जिस तरह सूर्य के प्रकाश में अंधकार के होने की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह शुद्ध कृष्ण भक्त में माया का अस्तित्व नहीं रह पाता. भगवान स्वयं भगवत गीता 7:14 में कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते. भौतिक प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं. जो कोई भ्रामक शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है उसे कृष्ण भक्त बनकर कृष्ण को सदैव अपने हृदय में धारण करना चाहिए. भगवत गीता 9:34 में भगवान उपदेश देते हैं कि मनुष्य सदैव उनका चिंतन करे. मन मनाभव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. इस तरह सदा कृष्ण भावना भावित रहते हुए मनुष्य माया के प्रभाव को पार कर सकता है. माया मेताम तरंतिते, क्योंकि रंतिदेव कृष्ण भावना भावित थे अतएव वे माया के वशीभूत नहीं थे. इस प्रसंग में स्वप्नवत शब्द महत्वपूर्ण है. क्योंकि भौतिक जगत में मन भौतिक कार्यों में मग्न रहता है अतएव सो जाने पर स्वप्न में बहुत से विपरीत कार्य दिखते हैं, किंतु जब मनुष्य जागता है तो ये सारे कार्य मन में समा जाते हैं. इसी प्रकार जब तक मनुष्य माया के वश में रहता है तब तक वह नाना प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाता है, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर स्वप्न जैसी ये योजनाएं स्वतः दूर हो जाती हैं.
हरे कृष्ण. ओम ज्ञान चैतन्य
मनोविष्ण
जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप में से कितने भक्त हो जो माया के प्रभाव से बचना चाहते हो? सब। ये तो शुद्ध भक्तों की सभा है। ये जो श्लोक है तात्पर्य आपके लिए है। अगर आपकी रुचि नहीं है माया से बचने के लिए तो दूसरा श्लोक सुनाएंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। एक गाड़ी है, क्षमा कीजिएगा, 2708 सेंट्रो, जिसकी भी है हटा लें, ये माया के रूप में हमारे को डिस्टर्ब कर रही है।
तो भागवतम में भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है और यहाँ इस 9वें अध्याय में महाराज रंती देव की कथा सुनाई जा रही है। महाराज रंती देव धार्मिक राजा थे और उन्होंने 48 दिनों के लिए पूरा व्रत रखा था अपनी पत्नी के साथ। और जैसे वो व्रत तोड़ने वाले थे एक ब्राह्मण उनके महल में आ गया। प्राचीन समय में कोई भी व्यक्ति किसी समय भी राजा के महल में पहुंच सकता था और राजा से दर्शन प्राप्त हो जाता था। आज के वातावरण में आप वो कर सकते हो, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के घर में सीधा जा सकते हो, उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो, टीवी में प्राप्त कर सकते हो। तो एक ब्राह्मण महाराज रंती देव की पत्नी वर तोड़ने वाले थे तो एक ब्राह्मण उनके महल में पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम नागरिकों की देखभाल करो, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दीजिए। तो राजा ने जो तो थोड़ा सा प्रसाद था जिसे वो अपना व्रत तोड़ने वाले थे दे दिया। फिर जो खाने लगे थे एक शूद्र व्यक्ति पहुंचा उनके महल में। शूद्र ने कहा, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। राजा ने जो थोड़ा सा बचा था भोजन प्रसाद किसी दे दिया, शूद्र व्यक्ति को थोड़ा सा जल बच गया था, बस जल पीने वाले थे तो एक शूद्र अनेक कुत्तों के साथ उनके महल में पहुंच गया। मुझे प्यास लगी है राजा, पीने के लिए दीजिए। राजा का क्या भाव था, तुरंत ही उन्होंने वो जल भी दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा, अभी मुझे भूख लगी है, 48 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, यहाँ आ गए हैं, इनको जाने दो भूखा। राजा ने सोचा कि मेरा कर्तव्य बनता है, राजा ने उन्हें सारा प्रसाद दे दिया। ये था उनका भाव। पर उनकी परीक्षा ले रहे थे देवता उनकी परीक्षा ले रहे थे और देवता बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा उनका व्यवहार। तो महाराज रंती देव की कथा भगवत में प्राप्त होती है और महाराज रंती देव भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप मुझे दूसरे के कष्टों को सहने दो। और आज के श्लोक में क्या कहने, भगवान महाराज रंती देव जो थे भगवान के शुद्ध भक्त थे और पौत्रिक इच्छाओं से मुक्त थे। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता और वैदिक ग्रंथों के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान के शरणगत हों तो जीवन को सफल बना सकते हैं। भनाजी देवा शुद्ध भक्त थे और वो अपने आप को माया से बचा सके क्योंकि जुड़े हुए थे भगवान की सेवा में। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृता नाम के ग्रंथ का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है उसका उपयोग किया है। आप ऐसे कितने भक्तों के पास घरों में चैतन्य चरितमृता है? चैतन्य चरितमृता की रचना कृष्णदास कविराज जी ने की है, उसमें चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं और उपदेश का ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयान है। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में और एक बड़े प्रसिद्ध भक्त धनोत्तम दास ठाकुर ने अपनी रचना में कहा है कि सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार कौन है? चैतन्य अवतार। वही क्यों माना जाता दयालु अवतार? उन्होंने बिना भेदभाव के सबको एक बड़ा सरल मार्ग दिया जिसके द्वारा वो भगवान की शरणागत हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में ये हरि नाम पहुंचेगा। हमारे आचार्यों को पूरा विश्वास था कि भगवान की भविष्यवाणी है तो सत्य निकलेगी। कईयों ने प्रयास किया इस भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए, पर इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो कई भक्त सोचने लगे, हाँ भगवान की भविष्यवाणी तो है पर लगता है कि ये सफल नहीं होगी। पर भक्तिविनोद ठाकुर जो कि एक महान संत थे जिनका तीव्र भाव कुछ दिन पहले आपने मनाया, उन्हें पूरा विश्वास था, उन्हें चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति माना जाता है, उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान की भविष्यवाणी है तो सत्य निकलेगी। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर जो उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध महाविद्यालयों को भेजा। उनकी भविष्यवाणी थी कि बहुत ही जल्द एक महासेनापति प्रकट होगा जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल बनाएगा। और कौन था वो महासेनापति? श्री प्रभुपाद। और उनके आगे ये भविष्यवाणी भी थी कि एक दिन विश्व के कोने कोने में लोग मृदंग और करतार लेकर कीर्तन करेंगे और विश्व के हर कोने से लोग आएंगे सीधा मायापुर में। आप ऐसे कितने भक्तों ने मायापुर का दर्शन लिया है? तो मुझे कहा गया था कि आज ही या कल आपके मंदिर से एक बड़ा ग्रुप गया है मायापुर धाम। मायापुर धाम चैतन्य महाप्रभु जी का पंच जन्म स्थान है और ये भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने इस योगपीठ को खोजा और स्थापित किया। ठाकुर भक्ति विनोद को चैतन्य महाप्रभु जी के भविष्य की दिव्य शक्ति माना जाता है। अंग्रेजों के राज्य के समय उनका समाज में काफी ऊंचा पद था। क्या थे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उन दिनों में अंग्रेजों के राज्य के समय इससे ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर को विश्वास नहीं था कि नवनिर्मित धाम जो कि बताया जा रहा था वहां प्रभु की जन्म का स्थान है, ये उनका जन्म का स्थान है। तो उन्होंने बहुत खोजा 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 और फिर उन्हें पता लगा कि योगपित जब माया पर जाते हो योग पे जाते हो ये है अस्थि स्थान। ये स्थान किसने स्थापित किया? भक्तिनाथ ठाकुर ने और उनके बेटे भक्ति सिद्धांता जी ने, जो प्रभुपाद को पहली बार मिले 1921 में, पहली मुलाकात में ही कहा तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ क्षेत्र महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। और उन्हें भी विश्वास था कि महाप्रभु की भविष्यवाणी सफल हो सकती है। और प्रभुपाद जी जब बड़े संघर्ष के साथ अमेरिका पहुंचे, आप भक्तों को शायद पता हो कि यही साल इस्कॉन के इतिहास में एक बड़ा खास साल है, इसका बड़ा गहरा महत्व है। क्यों, कौन बताएगा? 50 साल पूर्व अगस्त 13 को, 12 अगस्त 1965 को प्रभुपाद चले थे क्या कदा से अमेरिका के लिए। और जब प्रभुपाद क्या करा में जहाज में गए जला दूता, कोई व्यक्ति उन्हें छोड़ने नहीं आया था। प्रभुपाद जी अमेरिका में चले थे कितने रुपए के साथ? 4 रुपए के साथ। तो आज से लगभग 50 साल पूर्व प्रभुपाद निकले थे भारत से अमेरिका के लिए, किस आदेश के साथ, किस भाव के साथ? इस भाव के साथ क्योंकि गुरु महाराज का जो आदेश है उसको पूरा करना है। उनका आदेश क्या था? तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। और अगले साल एक और खास उत्सव है, और अगले साल होगा 50th एनिवर्सरी, जबकि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की? इस उद्देश्य के साथ कि लोगों को कृष्णा भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने चैतन्य चैतन्यता का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ का उपयोग किया है, कृष्णा सूर्य समा माया हाया अधिकारी, यहां कृष्ण माया अधिकारा। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? कई होने, लगभग सब ब्रह्मचारी ने तो किया होगा। तो इस श्लोक में कृष्णदास कविराज जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं जब सूर्य की रोशनी होती है तो अंधेरापन हो दिखता है, हाँ या ना? जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से अंधेरापन दूर हो जाता है, उसी प्रकार यहां कृष्ण भक्ति होगी वहां क्या दूर हो जाएगा? माया। माया का क्या अर्थ है? माया का अर्थ है उन कार्यों में जुड़ना जो कि शास्त्र के विपरीत है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में हमें भगवान ऋषभदेव का उपदेश मिलता है। ऋषभदेव भगवान भगवान के अवतार थे और ऋषभ शब्द का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध सबसे अच्छा। और उन्होंने अपने 100 बेटों के माध्यम से हम सबको बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। तो भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं पूनम प्रवता कृते विकर्मा, जो व्यक्ति विकर्मिक, विकर्मिक कार्य मतलब जो कि शास्त्र के विपरीत है, जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो व्यक्ति मूर्ख है। क्या आप मूर्ख क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति ये नहीं देख रहा कि आज जो भौतिक देह है वो केवल कष्ट कष्ट दे रहा है, और जब हम माया कार्य माया के प्रभाव के कार्य करते हैं, भीतर में कार्य करते हैं, तो इसका क्या अर्थ? फिर से आपको एक ध्येय प्राप्त होगा जो केवल क्या देगा? कष्ट ही कष्ट। तो वो कहते हैं प्रमदा, प्रमदा कहते हैं मूर्ख व्यक्ति है। तो आप सब जो यहां उपस्थित हो, क्यों उपस्थित हो? इसलिए क्योंकि आप माया से बचना चाहते हो। सच बात है, बचना चाहते हो या नहीं? अगर माया में रहना चाहते हो तो आप इधर नहीं आते, बचना चाहते हो। ये जरूर है कईयों का निर्णय दूसरों से ज्यादा हो सकता है, कईयों का ये भाव हो किसी भी हालत में हमें माया से बचना है, और कईयों का भाव होगा माया से बचना है तो माया भी चाहिए हमें, माया भी मीठी है। तो पर आप इधर हो इसलिए क्योंकि आप माया से बचना चाहते हो। तो माया से हम कैसे बचे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा सौभाग्य यह है कि शास्त्र में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। हम भौतिक समाज में हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, हल प्राप्त होता है हर समस्या का। आप डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टरों को कई बार आपकी बीमारी समझ ही नहीं आती, पर आपको बताएंगे नहीं। तो भौतिक समाज में चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, आप अपने आप को कष्टों से नहीं बचा सकते। हमें ये सब सुनना पसंद नहीं आता, तो ये है शास्त्र में। तो खान आयाम अशाजना, दुख ही दुख हर चीज स्थाई है। तो यहां कहा जा रहा है कि मनानंदी देवा अपने आप को माया से बचा सके, क्योंकि वो जुड़े हुए थे किसमें? भगवान की सेवा में। और तात्पर्य के श्लोक में कहा जा रहा है जिस प्रकार जहां कृष्ण भक्त जहां सूर्य है वहां अंधेरापन नहीं दिखता, उसी प्रकार जहां कृष्ण भक्ति है वहां आप माया से बच सकते हो। तो जिसका अर्थ यह है कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति में कैसे जुड़े रहे। चैतन्य महाप्रभु जी जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है। चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्त सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा, साधु संग में रहो, साधु संग में रहोगे तो अच्छे भाव अनुकूल होंगे। महाप्रभु ने पांच विषयों पर बल दिया, साधु संग, आगे नाम कीर्तन, आगे भागवत श्रवण, आगे और पांचवा धामवासी। तो साधु संग सबसे आवश्यक है। आप देखिए प्रभुपाद जी का उदाहरण, जैसे हमने कहा प्रभुपाद जी 50 साल पहले निकले थे भारत से। तो प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, उन्होंने अमेरिका का रूप देखा, तो उन्होंने सोचा कौन इस भक्ति को स्वीकार करेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी तो गए थे शुद्ध भक्ति का उपदेश देने। एक दिन जो प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, उन दिनों में काफी स्वामी जी भारत से जाते थे धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। तो एक समय एक स्वामी जी थे, स्वामी जी निखिलानंद, उन्होंने एक बड़ा आश्रम बनाया था वहां। तो उन्होंने दूसरे स्वामियों को अपने आश्रम में निमंत्रण दिया था आने के लिए। तो सब स्वामी गए, सारे स्वामी आए सूट और टाई पहनकर। प्रभुपाद जी को बुलाया था, प्रभुपाद जी उन दिनों अमेरिका में नए थे। प्रभुपाद जी पहुंचे धोती कुर्ते के साथ, सारे स्वामी कांटे और छुरी के साथ खा रहे थे, जैसे अंग्रेज लोग खाते हैं। आप तो हाथ से खाते हो, चम्मच से खाते हो, पश्चिम देश में लोग छुरी कांटे से खाते हैं, सोचते हैं हाथ से खाना पाप है। तो सारे स्वामी छुरी कांटे से खा रहे थे, और प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने सिर्फ फल खाया और कुछ नहीं खाया। सारे स्वामी मिले प्रभुपाद जी से, उन पर हंसने लगे, कहने लगे स्वामी जी आप तो नए आए हो इंग्लैंड अमेरिका में, हम सब पुराने हैं, आप धोती कुर्ते में आओगे कोई अपनी बात नहीं सुनेगा, और आप ये चार नियमों का की चर्चा करोगे कोई आपका उपदेश नहीं सुनेगा, आप ये हमारे जैसे सूट पहनना शुरू कर दो, काटे छुरी से खाना शुरू कर दो, और विद्याओं को प्रचार करना शुरू कर दो, इनके पास बड़ा धन है तो आपको गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। ये नाम का सुना तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं इधर आया हूं किस लिए, शुद्ध संदेश देने के लिए। तो प्रभुपाद जी भारत में जो उनका संघर्ष था, जब वो अमेरिका में पहुंचे वहां भी संघर्ष करना पड़ा, तो उन्हें यह पूरा विश्वास था कि राधा रानी जी की असीम कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, और राधा रानी जी की असीम कृपा से पापी व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। एक समय किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आप जादू कर सकते हो, क्योंकि यह सोचा जाता है कोई स्वामी है तो पूरी जादू की कला भी होगी। स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं जादू नहीं कर सकता, कोई जादू नहीं, पर एक जादू मैंने किया है। तो इस व्यक्ति में बड़ा उत्साह था, क्या जादू? मैंने हजारों नेचरों को शुद्ध ब्राह्मण बना दिया है। नेचर उसे कहते हैं जो कि पाप के कार्य में जुड़ा है बचपन में, और ब्राह्मण से कहते हैं विश्वास पर आधारित जीवन बिता रहा है। तो ये था प्रभुपाद जी का चमत्कार। तो प्रभुपाद जी ने यह स्थापित करके बताया है कि साधु संघ के माध्यम से लोग जुड़ सकते हैं। आज इस्कॉन संस्था के लाखों भक्त हैं सारे विश्व में, और भक्त कैसे बने? एक व्यक्ति 70 साल का भारत से निकले थे, और उस व्यक्ति ने एक को संग दी, उसे दूसरे को दी, और साधु संघ से भक्तों की संख्या बढ़ गई। तो उसी प्रकार आप सबकी भी अध्यात्म में रुचि है, अगर आप साधु संघ में रहोगे तो ये संभव है कि आपका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ते जाएगा, और अगर हम साधु संघ से दूर भागेंगे तो क्या परिणाम होगा? आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और इंग्लिश में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति के हम कैसे पहचानते हैं? किस प्रकार की संगत रखते हैं ना। अगर कोई शराबियों के साथ हो तो आपको पता ये भी शराबी है, जुआरियों के साथ हो तो आपको पता ये भी युवा खेल है। तो साधु संघ में रहो। प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की इस उद्देश्य के साथ कि आप साधु संघ का लाभ उठाओ। तो जैसे ये शनिवार का प्रोग्राम है, सर ये नियम बनाओ, शनिवार को हमने जाना ही है मंदिर कृष्ण बालराम का दर्शन करने। जैसे कृष्ण लोग चर्च में जाते हैं इतवार को, आपको शायद पता होगा कि लगभग 90% क्रिश्चियन हर इतवार को हिंदुस्तान में चर्च में जरूर जाएंगे, विदेशों में नहीं। विदेशों में जर्मनी जैसे देश में केवल 4% आबादी चर्च में जाती है इतवार को, पर भारत में 90% कृष्ण जाते हैं। इंग्लैंड में कोई 6-7% लोग, 100 में 6 आदमी जाते हैं चर्च हर इतवार को। तो आप लोगों को नियम बनाना चाहिए सब मंदिर हो। इसके अलावा भक्ति वृक्षा नामहत ठाकुर भक्ति में जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने नामहत की स्थापना की। उन्होंने कहा जिस प्रकार कोने कोने में इंद्र अतिथि की सुविधा प्राप्त होती है, इस प्रकार कोने कोने में एक दुकान होनी चाहिए जहां से लोगों को क्या प्राप्त हो। तो कोने कोने दुकान तो हम नहीं खोल सकते, तो अगर आप भक्तों के साथ मिलकर करें तो कोने कोने में नामहत के कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसमें भक्त आए। जैसे विश्व के कई देश है, खास करके मुसलमान देश चाइना वगैरह, जहां हम खुले रूप से मंदिर नहीं बना सकते, पर नामहत भक्ति वृक्षा धर्म के प्रोग्राम के द्वारा हजारों भक्त लोग भक्त बन रहे हैं साधु संघ के माध्यम से। सत्संग त्याग वैष्णव चारा भौतिक वाद्य भी संग उतना ही रखो जितना की आवश्यक हो, उनसे अधिक क्या करो साधु संघ। साधु संघ में रहोगे, खास करके अगर आप शुभ भक्तों की संगत में रहोगे, तो फिर आपको असली उपदेश मिलेगा। और असली उपदेश क्या है कलियुग के लिए, क्या है नाम संकीर्तन। खड़े दोष के निर राज्य नस्ते के महान नाम, खड़े गए दोष ही दोष है, एक गुण है वो है कृष्ण। तो कल पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे है ना, तो कल क्या बुलाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। तो हम खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रयास से यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन बनाया और कल के दिन को घोषित किया है इंटरनेशनल योगा डे। तो योग का असली अर्थ क्या है, भगवान के अनेक नाम है जिन्हें ही नाम है योगेश्वर। असली योगेश्वर कौन है, तो भगवान योगी नाम अपनी सर्वेशम, भगवान कहते हैं हर योगी जो है मेरा चिंतन करते हैं। तो योग का असली उद्देश्य होना चाहिए मानव इंद्रियों को वश में लाना। मानव इंद्रियों को वश में लाओगे तो ज्यादा सरलता के साथ भगवान की सेवा कर सकोगे। योग होना चाहिए योग का असली उद्देश्य। पर आज के लोगों के मन में क्या भाव है, योगा करेंगे मैं भी योगा करता हूं, हम योगा की निंदा नहीं कर रहे, हम योगा करेंगे अच्छा श्वास प्राप्त होगा। अच्छा श्वास प्राप्त होगा तो भगवान की सेवा करेंगे, नहीं अच्छा श्वास प्राप्त होगा तो हमें और इंद्रिय तृप्ति चाहिए, इसलिए हम योग के शिष्य बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में अब किसी भी बाजार में जाओगे, जैसे आपका पंजाबी बार का बाजार है, लक्ष्मीनगर बाजार है, हर एक बाजार में जाओगे आपको दो तीन चार योगा स्टूडियो देखेंगे। वहां लिखा है योगा स्टूडियो, योगा स्टूडियो। तो आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, अमेरिकन लोग हमारी संस्कृति की बड़ी आदर कर रहे हैं। तो उन्होंने भी 50 किस्म के नए योग बना दिए, गंगा योग, ये योग, वो योग, और वो योग को प्रसूर कर रहे हैं इंद्र तृप्ति के माध्यम से। लोग योग में जुड़ते हैं किसके अच्छा स्वास्थ्य हो तो हम ज्यादा इंद्र तृप्ति कर सकें। पर योग के द्वारा अच्छा स्वास्थ्य हो तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। योग का असली उद्देश्य है दोनों लोगों को पूरा वश में लेके आना, यह है असली योग। तो वैसे तो कल इंटरनेशनल योगा डे माना जा रहा है, मैंने सुना कि राजपथ वहां 40,000 लोगों में कम से कम राजपथ ना पर हम तो भक्ति योग का दिन रोज ही मनाते हैं। भक्ति योग हम चाहते हैं कि लोग मन इंद्रियों में वश में आकर भगवान की सेवा में जुड़े। अगर आप योग करोगे मन इंद्रियों के द्वारा योग करके अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करके क्योंकि इंद्रिया तृप्ति में जुड़ोगे तो इसका कुछ नाम नहीं। पर अगर आप योग करोगे और अच्छे भाव अनुकूल करोगे और आपका यह भाव रहेगा हमें भगवान की सेवा करनी, तो उसका लाभ है। तो साधु संग में रहोगे तो आपको हरि नाम की महिमा का ज्ञान मिलेगा और हरि नाम के माध्यम से ही सारे विश्व में लोग जुड़े। प्रभुपाद जी जैसे जब न्यूयॉर्क गए थे, एक पार्क है टॉपकिन स्क्वायर पार्क, मैंने आप भक्तों को पहले भी बताया था, उस पार्क में जाओगे। कोई न्यूयॉर्क जा रहा है? नहीं। तो इस पार्क में एक बड़ा प्लैक है एक पेड़ के नीचे, जहां लिखा है ये वो पेड़ है जिसके नीचे भक्तिवृंदावन स्वामी प्रभुपाद ने बैठकर हरिनाम का कीर्तन किया था और इस ग्रंथ संस्था की स्थापना की सारे विश्व में। तो प्रभुपाद जी संगत दी भक्तों को, अभी संगत दी वो भक्तों को और वो भक्त बन गए। भक्त कैसे बने? ये हरि कृष्ण के माध्यम से, ये हरि नाम के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें सेवा दो। और भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, इसलिए हम भक्तों से सदा एक ही विषय पर निवेदन करते हैं, क्या? चैंट हरे कृष्ण, चैंट हरे कृष्ण। भी मैं प्रभुपाद जी अमेरिका गए उन्हें में हिप्पियों का जमाना था, आपने हिप्पी शब्द सुना है पहले? बड़े बड़े भाव रखते थे, समाज के विरोध कार्य करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे वी आर कन्वर्टिंग हिप्पीज इन टू हैप्पीज। आप शायद समझे नहीं, हिप्पीज इन टू हैप्पी, जो हिप्पी है उनको हम बदल रहे हैं कि वो बिल्कुल खुश रहे, खुश खुश बन, हैप्पी बन जाते हैं। तो ये हरि नाम के माध्यम से अति सुख प्राप्त हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे तो अपने शिष्य को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, तो स्वयं वो केवल 8 श्लोक दे गए जिन्हें हम शिक्षाशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो शिक्षाशास्त्र के पहले श्लोक में कहते हैं अनंत ब्राह्मणों, ये अभिनाम के उच्चारण का एक लाभ क्या है, आप असली आनंद अनुभव कर सकते हो। तो हम भक्तों से सदा यही कहते हैं चैन है। कई बार हमें लोग दोष देते हैं, ये है कि हमने बड़े नैरो महीने गए, एक ही मंत्र पर बढ़ते रहे। हमारे गुरुदेव कितने दयालु हैं, उन्होंने पूरे छूट दिए, ये मंत्र लेने ले रहे तो हम हरे कृष्ण मंत्र पर क्यों बल देते हैं? क्योंकि ये है शास्त्र का निर्णय। शास्त्र शब्द का अर्थ पता है आपको? भगवान की, भगवान के बारे में कुछ कमी हो सकती है? नहीं। हमारे वाणी में कमी हो सकती है? हमारी वाणी में कमी है, कमी कमी है, वो ही वाणी मेरी। तो हरे कृष्ण के मूल उच्चारण से मोक्ष है कृष्ण भक्ति में। अगर आज आप देख रहे हो कि सारे विश्व में केंद्र है, उनका मूल कारण क्या है? ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण। जिस दिन हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं बड़े उत्साह के साथ, उस दिन आपका क्या अनुभव होता है बोलिए? क्या अनुभव होता है? भक्ति में उत्साह ऊंचा रहता है और माया में उत्साह घट जाता है। कृष्ण भगवान कब सुबह दिखने लग जाते हैं और माया बद सूरत। जो दिन आप ध्यान से जाप नहीं करते, क्या परिणाम होता है? माया खूबसूरत मिल जाती है और भगवान बद सूरत। सच बात है। तो इसलिए सब भक्तों को माया का जाप रोज करना चाहिए। आप में कितने भक्त हैं जो सोलह माला का जाप रोज करते हो? ऐसे तो भक्त सभी कर रहे। कितने भक्त हो जो माला का जाप, जो सोलह माला का जाप रोज नहीं करते? कितने भक्त हैं जो बिल्कुल माला का जाप नहीं करते? कम से कम आपके सभा में सब ब्राह्मण है, सच बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का दूसरा आदेश क्या था? छेठ हरे कृष्णा। पर आदेश क्या था? क्या साधु संगत। दूसरा, तीसरा था भगवत का अध्ययन। जैसे आज हमने आपको महानदी देव की कथा संक्षेप में सुनाई, इसी प्रकार अनेक भक्तों की लीलाएं हैं, इसी प्रकार भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का उपदेश। बौद्धिक समाज में हम फिल्म स्टार्स की लीलाओं में रुचि देते हैं। कोई स्कैंडल हो तो बड़े उत्साह से सुनते हैं। तो पॉलिटिशियन लोगों के बड़ी रुचि देते हैं। जैसे अखबारों में सब जगह आजकल एक गोलमाल का हेडलाइन आता है, पर जो भक्त है वो रुचि लेते हैं कि इसमें भगवान के भक्तों की लीला में। श्रीमदा स्वागत है कृष्ण पूर्ण स्वर्ण कहते रहा। हम भगवान के भक्तों की लीलाओं का स्वरूप है, तो फिर मानवी भाव खुद ही खुद निकलेंगे। अगर एक ग्लास पानी से भरा हुआ है तो फिर और कोई जोड़ ही नहीं सकते। तो आपको किस में रुचि लेनी चाहिए? भगवतम में। भगवतम को पढ़ो। आप में से कितने भक्त हो जिनके घरों में श्रीमद् भागवतम का सेट है? तो कितने भक्त हो ये भागवतम का सेट, भागवतम का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। तो अगर आप कोई विदेशी भाषा सीख रहे हो, उसमें भी हम भागवतम को दे सकते हैं। चीन में, रशियन में, चाइना का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है जिसने भगवतम छापा है। तो भगवतम को सुनो, और अगर आप मंदिर नहीं आ सकते सुनने के लिए तो इंटरनेट में सुन सकते हो। फिर अगर चौथा नियम क्या था? भगवान के आचार विग्रह की श्रद्धा और आदर के साथ। भगवान इस कलयुग में प्रकट होते हैं अभी लोगों के माध्यम से और अपने आचार विग्रह के माध्यम से। जैसे आपके इस मंदिर में श्री श्री कृष्ण महाराज का विग्रह है, गोविंदाई का विग्रह है, श्री श्री राधिका मंदिर विग्रह है। तो भगवान प्रकट होते हैं आचार विग्रह के रूप में। और हमारे कई भक्त हैं जो घरों में मंदिर बनाते हैं, पांच विग्रह की मूर्ति रखते हैं और इस मूर्ति को भोग बनाते हैं, और पांचवा क्या है, धाम है, धामवासी बनो। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस सरल उपदेश दिया है जिसका हम खुद देख सकते हैं कि हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप माया से बचना चाहते हो, और हमें पूरा विश्वास है कि आप बचना चाहते हो, तो हमें इस श्लोक और तात्पर्य का संदेश का पालन करना चाहिए। तो वो यह है कि हमें कृष्ण भक्ति में जुड़े रहना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति के जुड़ने का अर्थ क्या है, हमें इस शिक्षा का पालन करना। ये नहीं कि हम मनमानी कार्य करें और कहें हम भगवान की शिक्षा का पालन कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण मैनेजमेंट संघ के द्वारा हमको केवल शुद्ध संदेश दिया जा रहा है, और इसे स्वीकार करोगे तो जीवन को सफल बना सकोगे। तो आप सबसे यही निवेदन है, नाम को जाप कीजिए, ग्रंथों का भी अध्ययन कीजिए। हमारे वैदिक शास्त्रों में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। हमें ग्रंथ को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो भक्त मंदिर में रहते हैं, प्रभुपाद जी ने नियम बनाया था भगवद्गीता का क्लास, गीता क्लास। जो मंदिर में नहीं रहते, आप घरों में भी इन ग्रंथों को पढ़ सकते हो। ग्रंथों में भगवान की वाणी, और भगवान जब देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं उनकी वाणी को समझने के लिए, भगवान हमें शक्ति देते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकें। तो आप सब की अध्यात्मिक में रुचि है, जब मैंने पूछा माया से कौन कौन बचना चाहता है, सबने हाथ उठाया था लगभग, तो यह बड़ा अच्छा भाव है। तो आप सबसे संदेश है, सबसे निवेदन है कि आप हरि नाम को अपनाइए। हरि नाम के द्वारा आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, सेवा रख दीजिए। रूप गोस्वामी जी महान संत कहते हैं, भगवान के नाम तो चीनी जैसे मीठे हैं, मीठापन सबको अच्छा लगता है, पर क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, अविद्या जो कि हम काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य के रूप में अनुभव करते हैं, हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी आपको बुखार हो जाता है, बुखार जब है तो आपको भोजन का टेस्ट आता है, किसी चीज का स्वाद नहीं आता। फिर जब बुखार चले जाता है तो फिर से टेस्ट आने लगता है। उसी प्रकार हमारे जीव में, इंद्रियों में, बुद्धि में अज्ञानता का प्रभाव है। अगर हम मोहन अगर जाप करेंगे तो जाप से, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य दर्पण मार्जनम, हृदय की मैल दूर होगी। यही हरि नाम जो कड़वा दिख रहा है मीठा दिखेगा। मैं इतने भक्तों को जानता हूं सारे विश्व में, जब उनका पहले परिचय हुआ हरि नाम से, उन्होंने कहा हम कभी हरि नाम नहीं लेंगे। तो जब उन्होंने लेना शुरू किया और अज्ञानता दूर होते गई, तो उसके साथ साथ मीठापन बढ़ते गया। तो कृपा करके हरि नाम का जाप कीजिए, जितने ध्यान से करोगे उतनी तीव्र के साथ हृदय की मैल निकलेगी। हमें उनके भक्तों के दीनों का स्मरण करो, गीता का संदेश का स्मरण करो, और नियमित रूप से साधु संग में रहो। अगर आप ये सर्व नियमों का पालन करोगे तो बड़ी सरलता से भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। और जो भी खाओ उसको क्या करो, पहले भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो भोग लगाए बिना खाए क्या कर रहे हैं, तो आप पाप खाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, प्रसाद प्रसाद करते कृष्ण कृपा, तो ये खाओ तो कृष्ण प्रसाद खाओ। और ये सारे कार्य करोगे तो जिस आश्रम में हो उस आश्रम में रहते हुए आप अपने जीवन को सफल बना सकोगे। हम आपको ये भी कहेंगे धंधा छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, घर छोड़ दो, मंदिर में आओ, जहां हो वहीं रहो, पर इन सरल नियमों का पालन करो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण महाराज।
हाँ जी,
मेरे साधु संघ से रिलेटेड तीन प्रश्न है कि साधु संघ को हमें किस प्रकार से करना चाहिए, दूसरा कि साधु संघ में अगर मतभेद होता है तो उसको हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए, और तीसरा अगर बाहर के लोग साधु संघ में मतभेद देखते हैं तो उनका श्रद्धा या विश्वास भी कम होता है, तो इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए।
एक क्वेश्चन दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था?
कि साधु संघ में हमें किस प्रकार से करें कि उससे ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट ले सकें।
भागवत के 34 खंड में नारद मुनि कहते हैं कि तीन प्रकार के साधु संघ आपको प्राप्त होते हैं। एक है उनके साथ जो आपसे ज्यादा एडवांस है, दूसरा उनके साथ जो आपके बराबर के हैं, तीसरा उनके साथ जो आपसे कम एडवांस है। तो कैसा व्यवहार रखोगे? अगर आपकी संगत हो उनके साथ जो कि आपसे ज्यादा एडवांस नहीं, तो हमें अत्यंत खुश हो जाना चाहिए। जो आपके समानता के हैं उनसे मित्रता का भाव, और जिनके पास कम ज्ञान है उनके उनके से क्या भाव होना चाहिए, क्या दया।
कि अगर साधु संघ में मतभेद होता है तो उसको हमें किस प्रकार से डील करना चाहिए?
मिसअंडरस्टैंडिंग्स,
कॉन्फ्लिक्ट्स।
अगर मतभेद होता है तो आपकी जो एडवांस है वो भी है, उनके पास जाओ इस मतभेद को।
और अगर साधु संघ में मतभेद होता है तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो बाहर से लोग होते हैं या कॉन्ग्रीगेशन होता है तो उनका श्रद्धा या विश्वास भी कम होता है साधु संघ से।
कम क्यों होना चाहिए? अगर हम कम करना चाहें विश्वास तो 50 बहाने मिल जाएंगे, तो अगर हम नहीं कम करना चाहें तो फिर नहीं होगा। ये पॉजिटिव इंसान में थोड़ी बहुत कमी तो हर जगह रहेगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम इस फोन से जुड़ रहे हैं तो कोई कमी नहीं होगी किसी वक्त में, सबका आचरण बिल्कुल शास्त्र आधारित होगा, थोड़ी बहुत कमी तो कभी दिखेगी, पर जब कुछ कमी हो तो मंदिर द्वारा प्रयास रहता है सुधारने के लिए। ओके,
बहुत धन्यवाद गुरु महाराज। महाराज जैसे आपने शुरू में बताया था अपने क्लास में, अपने अभी कथा में, कि हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं भगवान की शरण लेते हैं। तो जैसे हमारा हम 16 माला का जप करते हैं, और जैसे आपने बताया शास्त्रों को पढ़ते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, माला का जप करते हैं, जो प्रभुपाद जी ने नियम दिए, इसके अलावा हम लोग और अपनी शरणागति भाव को कैसे बढ़ा सकते हैं? और
इतना कर लो वही बोलता है, उनकी चिंता मत करो, ये 5 कर लो यही बोलता है।
इसको और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं?
अच्छे तरीके से जब जप करने, सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान पूर्वक जप। जब जप करने बैठते हो तो जप पर ध्यान दो, यानी कि जप के साथ अनेक और कार्य कर रहे हो, और अगर आप जप को सुधारोगे तो भक्ति ज्यादा सरल बन जाएगी।
महाराज जैसे बताया चैंट एंड बी हैप्पी, तो इसको कैसे कंसर्न करें? समटाइम्स हम जैसे चैंटिंग करते हैं तो कभी कैजुअल होती है, कभी बहुत अच्छी चैंटिंग होती है, तो उसमें सेवा का भाव हमारा कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं, सिर्फ एक कैजुअल लेते हैं कि अभी हमने अपना कोटा पूरा कर लिया। और
सोचो कि मैंने ये वादा दिया है भगवान को, प्रभुपाद को, गुरु को कि मैं माला का जाप रोज करूंगा करूंगी और चलो ये आपकी सफलता है। चिंता मत करो अगर आपको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, माला का जाप कर दे जाओ। अगर आपको ऐसे लगे मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, मैं तो मैकेनिकली कर रहा हूं। कई बार लोगों को लगता है हम तो मैकेनिकल रूप से कर रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा, तो मैकेनिकल रूप से करते जाओ पर करो, टेस्ट खुद ही आ जाएगा।
धन्यवाद महाराज, बहुत चंदन से आपने समझाया। ये माया कई बार ये देखा जाता है कि जब हमारे पे माया का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो सारे फिलॉसफी भूल जाते हैं, तब हम शास्त्रों में अध्ययन करके सॉल्यूशन ढूंढते
हैं। ये सच है।
तो फिर कौन हम कैसे मदद प्राप्त कर सकते हैं?
माया बहुत तेज हो जाती है तो पूरा सिद्धांत झूठा लग जाता है। आपके मन में शक्ति है किसी चीज को भी जस्टिफाई करने की, जब माया में गिरना जाओ तो वो मन कहेगा ठीक है थोड़े समय में गिर रहे हो बाद में ठीक हो जाओगे। इसलिए हमें शास्त्र गुरु साधु का जो संदेश है उसी के आधार पर चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए। जैसे कि साधारण समाज में देखते हैं ये कानून के अनुसार है या नहीं, उसी प्रकार हमारा कानून है शास्त्र गुरु साधु, हमें यह देखना है उनकी शिक्षा के आधार पर है या नहीं है तो किसी कीमत में नहीं करो। अगर आपको कहा जाए इस खाने में एक बूंद जहर है तो आप खाओ, पर आपको साथ में 10,000 रुपये भेजेंगे खाने के लिए, आप खाओगे नहीं खाओगे? तो रूपक भूषण जी कहते हैं जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। ओके, साधु संग में रहोगे सब, चाहे शनिवार आओगे, मैं चाहता हूं कि शनिवार में प्रोग्राम बढ़ते जाए, थोड़ी देर तो छोटा हो गया था, अभी मंडल के अधिकारी फिर प्रयास कर रहे हैं बढ़ाने के लिए। शनिचर का प्रोग्राम बढ़ाएं या घटाएं? बढ़ाएं। इसका मतलब है आप सब आओगे, आपके मित्रों को भी लाओगे, तो आपको पता है कि आपके पड़ोस में नया मंदिर तैयार हो रहा है, क्या है वो? एक मंदिर तैयार हो रहा है भादू गर्मी में, अभी ज्यादा दूर नहीं है, तो आप सब जुड़िए वही मंदिर की सेवा में, तो आप जितनी सेवा करोगे उन्हें जल्दी से मंदिर बनेगा। सब सेवाओं मैंने अपने सभी सेवा की है, किन किन ने सेवा की है? सब मैंने की, तो जो भी नहीं की करें फिर आप कैसे होंगे? हमारी मेहनत से यह मंदिर बना था, और अगर मंदिर बन जाए आपकी सेवा के बगैर भगवान कहेंगे हाँ तुम दर्शन के लिए तो आ रहे हो, तो सेवा के वक्त पीछे हट गए थे, अगर आप सेवा करोगे और फिर आओगे तो भगवान के नीचे की सेवा की सबसे निवेदन है वो ये मैंने की सेवा की है। हरे
कृष्ण गोपाल कृष्ण साई महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत सुंदर संदेश दिया कि कैसे हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं, ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करके और भक्ति के नियमों का पालन करके, और असली योग का क्या अर्थ है, साधु संघ का कितना महत्व है, साधु संघ कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को सफल बनाए। तो महाराज के इस आशीर्वचन के लिए हम महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सब भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज कल पूरे विदेश के टूर पर जा रहे हैं और इसके लिए पहले महाराज ने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम महाराज को बहुत शुक्रगुजार हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, इताई गौर प्रेमानंदे।